श्री श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री श्री गौर निताय की, श्री पंचतत्व की, श्रील प्रभुपाद की। दया कर मोरे निताय, दया कर मोरे, दया कर दया कर मोरे निताय, दया कर मोरे, दया कर मोरे। अगतिर गति निताय साधु लोक बोले, अगति अगतिर गति निताय साधु लोक बोले, जय प्रेम भक्ति दाता पताका तोमार, जय प्रेम ओ जय प्रेम भक्ति दाता पताका तोमार, जय प्रेम अतम अदम किछु ना कैल विचार, उत्तम उत्तम अदम किछु ना कैल विचार, उत्तम प्रेम दाने जग जीवेर मन कैल सुखी, তুমি যদি দয়াল থাকো আমি কেন দুঃখী, তুমি যদি তুমি যদি দয়াল থাকো আমি কেন দুঃখী, তুমি যদি আমি কেন কানু রাম দাস বলে কি বলিব আমি, কানু রাম দাস বলে কি বলিব আমি, সমর কুলের ঠাকুর তুমি, এবার ও এবার ভর समर कुलेर ठाकुर तुमी दया कर मोरे नीता दया कर मोरे दया कर मोरे नीता अगति रगति नीता साधु लोक बोले अगति जय विष्णुपाद परमहंस परिपूजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमदाभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिपूजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री निताय गौर चंद्र की जय। श्री श्री गौर भक्त वृंद की जय। ग्रंथ राशि चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु संवाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांग जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति सोपदान्तिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं Shri Guru Vaishnavasam Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Itam Tam Sajivam Swadaitam Sabadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Visakhan Vitasham Namavam Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschata Desatarine Vancha Kalpataruvescha Tripasindhu Evacha Patitanam Pavanebho Vaishnavabhyo Namo 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 Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurati Sve Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneswari Vrishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna तो आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं आज प्रातःकाल इस चैतन्य चरितमृत कक्षा में और सभी भक्तों से हम आशीर्वाद की कामना करते हुए परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कुछ लीला कथाओं को हम चर्चा करेंगे। तो अभी हमने भजन पढ़ा था, जरा घुमा दो उसको, थोड़ा इसका हम इसका अर्थ को समझेंगे कि आज हमने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बलराम जी का एक हम भजन गाए। तो इसमें कहा गया है, दरअसल कोई भी व्यक्ति यदि परम भगवान का गुणगान करना चाहता है तो वो नित्यान प्रभु की कृपा से ही परम भगवान का गुणगान किया जा सकता है। नित्यान प्रभु की कृपा से, श्री बलराम जी की कृपा से ही हम लोग परम भगवान श्री कृष्ण गुणगान कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये गुरु तत्व है। इसलिए हम सबको भगवान का कीर्तन, भगवान को गुणगान करने से पहले हमें अपने गुरुदेव का आशीर्वाद की आशीर्वाद से हम लोग जो है गुणगान कर सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो हमारा परम गुरु है, गुरु तत्व है। तो इसमें कहा गया है, इतना सुंदर भजन है, कहा गया दया कर मोरे निताय, दया कर मोरे अगतिर गति निताय साधु लोगों बोले। ये ब्रह्मांड में जितने लोगों का उद्धार होने का मार्ग बंद हो चुका है, जिन लोगों का अगति, जिनका कोई गति हो नहीं सकता, ये संसार से मुक्त नहीं हो सकते, तो उन लोगों के लिए श्री नित्यानंद प्रभु उन लोगों के लिए है। ये साधु लोग जो है परम महाभागवत लोचन दास ठाकुर, वृंदावन दास ठाकुर, महान आचार्य जो है इसका ये कह रहे हैं, उनकी वाणी है कि जो अगति, जिनका दरवाजा बंद हो चुका भगवतधाम जाने के लिए, उनके लिए आश्रय है श्री नित्यानंद प्रभु। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। प्रेम भक्ति दाता पता का तोमार उत्तम अधम किछु नाकेलो विचार। वो प्रेम प्रदान करते हैं, सारा संसार एकमात्र प्रेम ही चाहता है, लेकिन प्रेम किसी को नहीं मिलता। झूठ मूठ के बोलते हैं हम प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, किसी सा किसी से प्रेम नहीं, सो स्वार्थ है। असली प्रेम है कृष्ण प्रेम। तो प्रेम का जो दाता है, प्रेम देने वाला, असली प्रेम देने वाले पता का तोमार जो है, पता का झंडा को पता का बोला जाता, तो चिन्ह है, चिन्ह है। जैसे अर्जुन का रथ का जो है जो झंडा था हनुमान जी थे, जगन्नाथ का पताका है पतित पावन जगन्नाथ, पतित पावन बाना। तो उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु का जो मंदिर में जो झंडा लगा हुआ है वो भी पतित पावन है, पता का तुम्हार, वो जो है कौन ऊंचा है, मैं ब्राह्मण को मुक्त करूं, क्षत्रिय को मुक्त करूं, वैश्य को मुक्त करूं, शूद्र को मुक्त करूं या चंडाल को मुक्त करूं, किसी को भी जो है विचार नहीं करते, सभी को मुक्त कर देते हैं। प्रेमो दाने जगत जीवर मन के लिए सुख, प्रेम देकर सारे जगत वासियों का नित्यानंद प्रभु ने उनके मन में जो है सुख की बाढ़ जो ले आए। तुम्हें यदि दयाल ठाकुर आमी के न दुखी, प्रभु आप इतने महान भगवान हैं और हम क्यों आपको भूल कर इस संसार में दुख भोग रहे, मेरा दुर्भाग्य है। कानू राम दास बोले के बोली वो आमी ये बड़ो भरोसा मोरो कुले ठाकुर तुम्हें, तो हमारा कुल देवता है नित्यानंद प्रभु, आपको आप तो मेरे कुल देवता है, फिर मैं क्या और बताऊं। इस प्रकार जो है कानू राम दास ठाकुर जो है ये प्रार्थना करते। कानू राम दास जी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। तो अभी हम लोग चैतन्य चरितमृत का अपना जो प्रयास संख्या 56 को हम अभी चर्चा करेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला अनंत है, अनंत गुण है, मेरे में कोई योग्यता नहीं है कि उनके गुणों गान कर सकूं, हमारी भक्ति भी ठीक नहीं है, मेरे में भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, भक्ति ना ही ज्ञान ना ही नाम खूब डर। और श्रील प्रभुपाद जी जो है ये प्रार्थना कर रहे थे जब जा रहे थे, मेरे भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है, उसी अवस्था में जो है मैं भी आपके सामने उपस्थित हूँ, आप सब कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मनुष्य जीवन का सार्थकता है भगवान की गुणगान करना, तो गुणगान करते हुए हम जो है मनुष्य जीवन को सार्थक कर सके, गुरु परंपरा के अधीन की कामना करते, इसलिए प्रभुपाद जी के चरणों में आशीर्वाद कामना करते हुए हम लोग आज के प्रयाग हम चलेंगे। तो प्रयास संख्या 56 है, तो आप लोग हमारे साथ बोलिएगा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, हो जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। नमस्कार केल राय प्रभु केल लिंग, नमस्कार केल राय प्रभु केल आलिंग, दुई जने कृष्ण कथा कहे रहस्ता, दुई जने कृष्ण कथा कर स्थाने, नमस्कार केल राय प्रभु केल आलिंग, दुई जने कृष्ण कथा कह रहेस्ता, नमस्कार केल राय प्रभु केल आलिंग, दुई जने कृष्ण कथा कह रहेस्ता, नमस्कार केल राय प्रभु केल आलिंग, দুই জনে কৃষ্ণ কথা কর হে স্মরণ, নমস্কার কেন রাখ কেন আলিঙ্গন, দুই জলে কৃষ্ণ কথা কহর স্থানে, ধন্যবাদ। তো ইসমে অনুবাদ শব্দার্থ, নমস্কার কেল রায় প্রভু কেল আলিঙ্গন, দুই জন কৃষ্ণ কথা কহ রহে স্থান। তো অনুবাদ যো হে ইস প্রকার হে কি রামানন্দ রায় নে মহাপ্রভু কে পাশ আকর সাদর নমস্কার কিয়া আর মহাপ্রভু নে উনকে আলিঙ্গন কিয়ে, ফির ইয়ে দোনো একান্ত স্থান মে কৃষ্ণ কে বিষয় মে চর্চা করনে লাগে। তো ইস অধ্যায় মে যো হে চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী রামানন্দ রায় জি কা যো হে সম্বাদ প্রারম্ভ হো রা। তো বর্তমান সময় আগলে সন্ডে কো ইনকা আগলে মন্ডে কো যো হে ইনকা বার্তালাপ প্রারম্ভ হো জায়েগা। তো পিছলে সোমবার কো যো শ্লোক হুই থি ইস প্রকার যো কি প্রভু কয় তুমি মহাভাগবত তম তোমার দর্শন সবার দ্রব্য হইলে মন। তো মহাপ্রভু নে রামানন্দ রায় কা প্রশংসা করতে হুয়ে আপ মহাভাগবত হে আপকে দর্শন সে যো হে মেরা ভি যো হে হৃদয় দ্রবিত হো রা হে, ইয়ে যো প্রয়ার সংখ্যা পিছলে বার লিয়ে থে, আগে আগে যো প্রয়ার সংখ্যা 45 সে 56 তক হাম লেঙ্গে, 11 প্রয়ার হে। তো চৈতন্য মহাপ্রভু আগে বতা রে, অন্য কি কথা আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, আমি হ তোমার স্পর্শ কৃষ্ণ প্রেম ভাষী। তো শ্লোক মে চৈতন্য মহাপ্রভু কে রে মে দূসর কে ক্যা বাত কহু, মে তো মায়াবাদী সন্ন্যাসী হুম আর মে আপকা সঙ্গ সে মে আপকে আকে আপকে সঙ্গ মে আনে কারণ যো হে মুঝে যো হে থোড়ি বহুত কৃষ্ণ প্রেম কা কুছ আভাস হো রহা হে। চৈতন্য মহাপ্রভু ইহা পে আপনে আপকো কে রে মে মায়াবাদী সন্ন্যাসী হুম, কেশব ভারতী সম্প্রদায় সে সন্ন্যাস লিয়ে থে তো ইস কারণ সে আপনে আপকো মায়াবাদ সন্ন্যাস কে রে। চৈতন্য মহাপ্রভু ইয়ে অবতার যো হে ভক্ত কা অবতার হে, আপনি ভক্তি কো প্রকট পুরা চরম ভক্তি কো ইস অবতার মে মহাপ্রভু প্রকট করেঙ্গে। তো ইতনি মহান যো ইতনি মহান ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এক ভক্ত কা ভূমিকা নিভা রে হে আর আপনি আপ কে রে কি মে মায়াবাদী সন্ন্যাসী। শ্রী সাদর অধিকার মন কৃষ্ণ বলরাম গৌর নিতে জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহারানী কি চা কেউ চৈতন্য কিউকে দেখিয়ে ইসমে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কে লীলা সে হামলো আপনে ভক্তিময় জীবন মে কেসা হামে আচরণ করনা চাহিয়ে ও হাম শিখতে হ্যাঁ চৈতন্য চরিতামৃত কি লীলা সে। তো চৈতন্য আগর হামলোগ বাস্তব মে হামলোগ গৌড়িয়া বৈষ্ণব বননা চাহতে হ্যাঁ, হাম কিসি জাতি কে বর্ণ আশ্রম যো হ্যাঁ হাম কিসি বর্ণ মে নেই কিসি যো হ্যাঁ না হাম বিপ্র না চ নরপতি না বিবেশ্য না শূদ্র, হাম সব যো হ্যাঁ রূপানুপ বৈষ্ণব বননা চাহতে হ্যাঁ গৌড়িয়া বৈষ্ণব বননা চাহতে হ্যাঁ। তো গৌড়িয়া বৈষ্ণব বননে ওয়ালে কো কোই বননা চাহতা হ্যাঁ তো উসকো আচ্ছে ঢঙ্গ সে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত সমঝনা চাহিয়ে, কেসা ব্যবহার হ্যাঁ চৈতন্য মহাপ্রভু কা রামানন্দ রায় কে বীচ মে কেসা ব্যবহার থা। চৈতন্য মহাপ্রভু মে যো হ্যাঁ এক মায়াবাদী সন্ন্যাসী হুম, কুছ ভি নেই থা কোই মায়াবাদ নেই থা, না উনকি সিদ্ধান্ত মায়াবাদী হ্যাঁ না কুছ কোই মায়াবাদী নেই থি। কেশব ভারতী সে সন্ন্যাস লেনে কারণ কে রে মে মায়া মে যো হ্যাঁ মায়াবাদ হুম আর কেশব ভারতী ভি যো হ্যাঁ কোই মায়াবাদী নেই থি, ও পরম বৈষ্ণব থে, উনহনে মাধবেন্দ্রপুরী জি কে সঙ্গ প্রাপ্ত কিয়ে উনসে শিক্ষা দীক্ষা প্রাপ্ত কিয়ে प्रारंभिक दिनों में उन्होंने वेदों का अध्ययन किए, वेदों का सारस को समझे, ऐसे कारणवश उनके अंदर जो वैराग्य उत्पन्न हुआ तो उन्होंने संन्यास ऐसे ले लिया। लेकिन थे परम भागवत, परम महान वैष्णव थे, महाभागवत थे। तो जब केशव भारती वहां पर जब तीर्थ भ्रमण करते करते नवदीप धाम में आए, तो नवदीप धाम में आए तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जो है अपना संकीर्तन लीला का प्रकट कर चुके थे और संन्यास लेने का मूड भी बना चुके थे। तो एक दिन केशव भारती जी को अपने घर में बुलाए, भोजन कराए और उनको ये कहा, कृपा करके आप मुझे मेरा संसार बंधन को काट दीजिए। देखिए चैतन्य चरितमृत में एक एक लीला में क्या हमारा भक्तों का व्यवहार होना चाहिए, क्या हमारे भक्तों में डीलिंग होना चाहिए, ये सब शिक्षाएं जहाँ प्राप्त होता है। तो चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित विश्वंबर प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आप मेरे एक सन्यासी को देखकर, एक वैष्णव को देखकर ये प्रार्थना करें, आप मेरे संसार बंधन को काट दीजिए। तो जब हम भक्तों से प्रार्थना करते हैं, अगर हमारे अंदर दोष भरा हुआ है, इस दोष को मैं कैसे समाप्त करूं, तो अगर भक्तों से प्रार्थना करते हैं तो हमारा दोष कटने लगती है। तो वही शक्ति है, हमारे परंपरा में शक्ति वही है, आज तक चले आ रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है कि वो तो हम रूप गोस्वामी के सामने थोड़ा अपने आप समर्पण कर रहे हैं, प्रभुपाद के सामने थोड़ा समर्पण कर, चैतन्य महाप्रभु के सामने थोड़ा समर्पण कर रहे हैं, नहीं, वर्तमान समय में भी जो भक्तगण है, जो वरिष्ठ भक्तगण है, उनसे भी जो हम लोग जो है प्रार्थना करते हैं कि मेरे अंदर एक कमियां हैं, मैं सुधार नहीं पा रहा हूं, मैं कैसे अपने कमियों को सुधार सकता हूं, तो हमें शक्ति प्राप्त होती है। तो जो है चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती से कहा, मैं आप मेरा संसार बंधन को काट दीजिए। तो हमें सबको इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, सबको प्रार्थना करनी चाहिए अगर भक्ति के चरम सीमा को प्राप्त करना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को प्राप्त करना चाहते हैं, एक खास करके ब्रह्मचारियों को खूब आवश्यकता है, अपने अंदर कोई चीज को ना छुपाएं, कपट को ना छुपाएं, वो कपट ही एक दिन जो है हम सबको खा जाएगा। इसलिए भक्तों के सामने कम से कम हम अपने ड्यूटीज के सामने, चलो भक्त लोग कुछ बोल देंगे तो प्रारंभ करें प्रभुपाद के सामने, ड्यूटीज के सामने प्रार्थना करें, फिर थोड़ा सा जो है हम लोग से भक्तों के सामने भी प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना करने की जो है तो करेंगे, हम अपने हृदय को रखेंगे, बीमारी को ना छुपाएं, फिर कैंसर हो जाएगा समय के अनुसार। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस प्रकार जो मेरा संसार बंधन को काट दीजिए। तो केशव भारती ने कहा, तुम्ही ईश्वर अंतर्यामी, यह कराओ से करीबो स्वतंत्र नहीं आमी। आप तो परम ईश्वर है। केशव भारती समझ गए थे निमाई पंडित को, विश्वंबर को, क्योंकि जो संकीर्तन लीला किए थे ये कोई साधारण लीला नहीं थी। कहां छुप सकते, परम वैष्णव थे, इसलिए महाप्रभु को समझ गए थे कि ये जो है कृष्ण है। तो हम तो स्वतंत्र नहीं है, आप तो ईश्वर है, आप तो सारा जगत के नियंता है, और जो आप करना चाहते हैं वही हम करेंगे। और समय के अनुसार माघ महीने के शुक्ल त्रयोदशी को जो है चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के लिए कटवे पहुंचे, कटवे पहुंचकर अपने कुछ भक्तों के साथ गए थे महाप्रभु। तो वहां पर भी उन्होंने यही उनको कहा, देखो केशव संप्रदाय संन्यास तो लिए हुए थे और उनकी जो मुख्य मंत्र है वह तत्वमसी उनका मुख्य मंत्र था। तो उन्होंने जाकर चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती जी को प्रणाम किए, उनको कहा कि हे न्यास शिरोमणि, हे सन्यासी शिरोमणि, आप कृपा करके कृष्ण को मेरा प्राणनाथ बना दीजिए। तो उनसे मंत्र जो है मांग रहे थे, उनसे गुरु उनसे जो है उनसे मंत्र मांग रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु सब रेडी हो गए, मैं संन्यास लीला में नहीं जाऊंगा, सब रेडी हो गए। रेडी होकर जो केशव भारती संन्यास मंत्र देने जा रहे थे, लेकिन वो जो है बड़बड़ा रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। भगवान को कृष्ण को क्या मैं संन्यास मंत्र दूं, तो बड़बड़ा रहे थे, उससे हिम्मत नहीं हो रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कान में जो है तत्वमसी की व्याख्या भक्ति से किए कि जो है हम उस परम ब्रह्म भगवान कृष्ण का जो है दास हैं, तो मैं कृष्ण दास बनना चाहता हूँ, ये संन्यास जो है संन्यास का अर्थ। तो फिर उन्होंने जो है उन्होंने भी कान में बोले केशव, फिर जो है महाप्रभु ने कहा हाँ ठीक है ठीक है। बहुत लंबा विषय था। फिर चैतन्य महाप्रभु उनसे जो है वो फिर मंत्र दोबारा लिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु मायावाद संन्यास नहीं थे, उसके बाद जब संन्यास हुआ उसके मुकुंद ने बड़े सुंदर चैतन्य भागवतम में जो लिखा हुआ बड़े सुंदर उन्हें कीर्तन शुरू किए। और जब कीर्तन शुरू किए चैतन्य महाप्रभु के अंदर जैसे प्रेम भाव से कीर्तन करते थे, वैसे ही केशव भारती भी अपने दंड कमंडल फेंक कर बड़े उन्मद अवस्था में जो है कीर्तन करने लगे। तो इस तरह कुछ समय बीता, अगले दिन चैतन्य महाप्रभु जाने के लिए तैयार हुए, तो उन्होंने केशव भारती जी रोने लगे, नहीं आप जो है मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं आपके बिना जी नहीं सकता। चलो महाप्रभु ने क्या किए देखो, क्या चैतन्य महाप्रभु कहाँ मायावाद संन्यास कह सकते। तो फिर महाप्रभु उनको लेकर गए, साथ में कुछ समय ले कुछ दूर तक ले गए, फिर वापस भेज दिए। जब वापस भेज दिए कटनी में तुम दोबारा चले जाओ, तो आए तो सभी लोग डांटने लगे, उन सन्यासी को डांटने लगे, तो तुम्हारा जो है सन्यास, तुम्हारा हृदय कठोर हो गया, पत्थर का बन चुका है। वो बूढ़ी माता और जो है नवयुवती उनकी पत्नी है, उनको तुमने सन्यास दे दिया। तो सब लोग जो टोकने लगे, तो ईश्वर जो केशव भारती जो है उनको देखे, देखकर उनके सामने उनकी गांव वालों को प्रशंसा करने लगे, धन्य है तुम लोग गौरांग महाप्रभु के प्रति तुम्हारा इतना जो है भाव है, इतना तुम्हारा श्रद्धा है। इस प्रकार वास्तविक जो है चैतन्य तत्व का जो उन्होंने जब व्याख्या किया, तो सभी लोगों को जो है धीरज धराया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जो है ईश्वर है, ये अपनी लीलाएं कर रहे हैं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सन्यासी मायावादी तो नहीं थे, लेकिन जो है भक्तों का स्वभाव होती है कि दूसरों का दोष देने से पहले अपने अंदर अगर थोड़ी सी भी दोष है उसको प्रकट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु थोड़ी सी भारतीय संप्रदाय होने के कारण कह रहे कि मैं जो है मायावादी सन्यासी, मेरे अंदर कहां है। तो आगे कह रहे यही जानी कठिन मोर शोधिते, यही जानी कठिन मोर हृदय शोधिते, सार्वभौम कहिले न तुम्हारो मिलते। महाप्रभु ने कहा मेरा इस कठोर हृदय को शोधन करने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने आपके पास आपसे मिलने के लिए मुझसे कहा था जब मैं दक्षिण भारतीय यात्रा पे निकला था। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि मेरा कठोर हृदय को शोधन करने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि आपसे मिलने के लिए। तो वास्तव में देखा जाए सार्वभौम भट्टाचार्य के लिए कहा जाता, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे मायावाद टीचर, मायावाद टीचर थे, अस्वर्ष अस्वर्शील हो तार प्रेम अधीन। जो मायावाद टीचर को जो छूना भी नहीं चाहिए, छूत हो जाएगा, अछूत है, छूना भी नहीं चाहिए। तो वो अवस्था थी कृष्णदास कविराज गोस्वामी, एक महान वैष्णव महाभागवत कह रहे, तो वो अवस्था थी। लेकिन तो उसको भी जो है महाप्रभु ने जब सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बना दिए, वो अपना सब कुछ भूलकर जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाकर उन्मद अवस्था में कीर्तन करने लगा, भक्ति का लक्षण प्रकट करने लगा, तो सारे जगत में पता लग गया कि वास्तव में जो गौर वर्ण के जो भगवान के जो अवतार है वो प्रकट हो चुके हैं। तो रामानंद राय को खबर मिल चुकी थी, मायावाद गुरु भट्टाचार्य को जो है उन्होंने वैष्णव बना दिया, तो इस जो है स्वयं कोई शक्तिशाली व्यक्ति है। स्वयं भगवान जो है यही कार्य कर सकते थे, तो उनको पता लग चुका था। और अभी जो है वहां पर दोनों का मुलाकात हुआ, रामानंद राय और श्री चैतन्य महाप्रभु को, तो दोनों को एक दूसरे को पहचान गए। अगले पंक्ति में कह रहे एई मत दुई स्तुति करे दुहार गुण, दुई दुहार दर्शने आनंदित मन। इस प्रकार दोनों मिलकर एक दूसरे को खूब गुणगान करते हैं, गुणगान कर रहे हैं, और दोनों मिलकर एक दोनों का हृदय से आनंद से भर चुका है, क्योंकि कृष्ण है ललिता सखी है, स्वाभाविक इनमें तो आकर्षण है, हृदय प्रेम से तो भर ही जाएगा। लेकिन दोनों को स्तुति कर रहे हैं, ये भी एक हमारा वैष्णव शिक्षा है। जब भक्त लोग मिलते हैं तो वो लोग एक दूसरे स्तुति करते हैं। जिनके अंदर भक्ति है तो वो लोग जब मिलेंगे तो स्तुति करेंगे, वास्तविक स्तुतियां करेंगे, झूठा स्तुति नकली स्तुति नहीं करेंगे, वास्तविक स्तुति जो है ये लोग करेंगे। तो अगर हमारे अंदर कोई स्तुति ऐसे आ रहे मजाक करने की, मजाक करते हुए हम लोग कुछ टांग खींचते हुए कर रहे हैं, तो ये हमारा हृदय में अभी भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं भरा हुआ। बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए कि हम लोग जो है एक हंसी मजाक लिमिट को जो है क्षमा कीजिएगा, कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं तो अपने सिद्धिकरण के लिए, अपने लिए, अपने जीवन परिवर्तन के लिए बोल रहा हूँ, तो इसको अप्लाई करना चाहता हूँ इस कारण से। तो यही है कि हम जब हृदय में भक्ति होती है तो गुणगान करता है ना। आप भागवत नहीं पढ़ोगे, गीता नहीं पढ़ोगे, आप क्या वर्णन करोगे, कथा की क्या वर्णन करोगे, क्या बताओगे, पढ़ोगे। तो उसी प्रकार हम लोग अगर रियल में मिलकर स्तुति नहीं कर रहे, वास्तविक स्तुति नहीं कर रहे, देखो एक बात है, अगर किसी भक्त दूसरे भक्त के अंदर छोटी सी भी अगर गुण होना, उसको बढ़ा करके आप गुणगान करो, और अपने अंदर छोटा सा भी कमी है तो तुरंत प्रकट करो, दूसरे भक्तों का गुणगान करो। तो उस प्रकार जो है जो यहां पर एक दूसरे को मिलकर एक दूसरे गुणगान कर रहे, खूब गुणगान किया रामानंद का, तुम्हार कृपा है तुम्हार कराई नंद कर्म, साक्षात तो ईश्वर तुम्हें के जानो तुम्हार मर्म। रामानंद पहचान गए, अरे कोई भक्त कैसे अपने भगवान को अपने इष्ट देव को छुपा सकता है, कैसे छुपा सकता। जब ईश्वरपुरी जी पहुंचे अद्वैत आचार्य के घर में, पूछा अद्वैत, उसमें जो है शालिग्राम की अर्चन में लगे हुए थे, तो ईश्वर चुपचाप आके बैठ गए, पीछे बैठ गए। तो जब शालिग्राम अर्चन कर रहे थे, बार बार उनकी जो ध्यान जो है ईश्वरपुर के प्रति जा रहा था, तो कह रहे महाशय आप कौन है, क्या आप कोई वैष्णव है। तो ईश्वरपुर, मैं बहुत एक क्षुद्र अधम हूं, आपका मैं दर्शन करने के लिए आया हूं, गुरु भाई होंगे। तो ईश्वरपुर जी ने कहा, तो ऐसे बोलते ही जो है मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि महाभागवत अद्वैताचार्य ईश्वरपुरी महाभागवत इसके इसलिए वैष्णव को आते ही उनके अंदर आभास जागृत हो जाती है, आभास नाम, आभास भक्ति का आभास, तो देखते ही श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार जो है जो गुणगान जो है भक्त लोग जब मिलते हैं तो असली गुणगान करते हैं। तो ईश्वरपुरी जी का अद्वैताचार्य, फिर महान संकीर्तन जब वहां पे आरंभ हो गया, तब पता लग गया ये क्या स्तर है ईश्वरपुरी जी के, कृष्ण प्रेम का भंडार। तो इस प्रकार जो है गुण, असली जब भक्ति होती है हृदय में तो हम असली जो गुणगान करने लगते हैं, नहीं तो मौन रह जाना ज्यादा अच्छा है, मौन रहने से और आपके अंदर स्पिरिचुअल शक्ति जो है बढ़ेगी। अब फालतू का हम लोग जो करें मजाक करें तो वो जो मजाक ही गुणगान करे तो फिर जो है क्यों रस मिलेगा ना, क्योंकि असली रस नहीं मिलती, भक्ति रस नहीं मिलती, इसलिए मजाक ही रस को प्राप्त करते। तो इस प्रकार आगे कृष्णदास के विराज को स्वामी जी कह रहे, हे न काले वैद्य को एक वैष्णव ब्राह्मण दंडवती के लो प्रभु र निमंत्रण। तो उसी समय क्या हुआ, एक वैदिक ब्राह्मण आए और उन्हें दंडवत प्रणाम करके श्री चैतन्य महाप्रभु को जिन्होंने निमंत्रण किया कि आप हमारे घर में भिक्षा करने के लिए आइए। तो आगे निमंत्रण मानी लता रो वैष्णव जानिया रामानंद कहे प्रभु इसी तो हसिया। तो निमंत्रण महाप्रभु ने एक वैष्णव ब्राह्मण सोचकर उनका निमंत्रण को स्वीकार किए। तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे थे तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक ब्राह्मण के घर में भोजन किया करते थे। मुझे भी इस बात का बड़ा कंफ्यूज था कि चैतन्य महाप्रभु के ब्राह्मण के घर में क्यों भोजन कर रहे हैं, उनके अनेक पार्षद है उनके पास क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने वैष्णव महाराज से बात किया तो महाराज ने बताया कि जो चैतन्य महाप्रभु जिन प्रभुपाद भी बताते तात्पर्य में अभी इसमें इसे बताएंगे अभी तात्पर्य पढ़ूंगा तो छोटी सी तात्पर्य कि जो ब्राह्मण थे वो वैष्णव ब्राह्मण थे, वैष्णव ब्राह्मण थे तो उनके घर में चैतन्य महाप्रभु भोजन किया करते थे। वैष्णव ब्राह्मण ब्राह्मण हो लेकिन वैष्णव हो तो उनके घर में चैतन्य महाप्रभु जो है भोजन किया करते थे। तो एक छोटी सी लीला है चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु जब निमाय पंडित छोटे से बालक थे उनके घर में एक बार जो है एक तीर्थयात्री ब्राह्मण आया, उन्होंने जगन्नाथ मिश्र के निवेदन पे उन्होंने भोजन बनाया, भोजन बना के वो शालिग्राम शिला को अर्पण कर रहे थे। उसी समय असली शालिग्राम शिला निमाय पंडित जो है वहाँ पहुँच गए और उनकी जो है भोजन को ग्रहण कर लिए। इससे ब्राह्मण जो बड़ा दुखी परेशान हो गया, उन्होंने जो है चिल्लाने लगा तो जगन्नाथ मिश्र जो है और शची माता पड़ोसी सब दौड़ते हुए आए, क्या हो गया ब्राह्मण को अचानक। तो कह के इस लड़के ने मेरा भोजन तो झूठा कर दिया, मैं अभी कृष्ण को अर्पण नहीं कर सकता और मैं खुद भी नहीं खा सकता। तो जगन्नाथ मिश्र माफी मांगे, कृपा करके आप अतिथि बने हो, हमारे घर में भूखा रहना ठीक नहीं है, ये धर्म के विपरीत है, आप दोबारा भोजन कीजिए। कहने पर सची माता ने क्या कि निमाय पंडित को लेकर चली गई पड़ोसी के घर में, अपने गोदी में उठाई लेकर चली गई। तो निमाय पंडित जो उनके पीताम्बर पहने हुए थे, उनके पाँव में नुपुर था और हाथ में कड़े भी थे, परम सुंदर गौर वर्ण के घुंघराले बाल थे, कमर में करधनी भी पहने हुए थे। तो माता सचिन उनको लेकर चली गई, शाम का समय था। तो वहां पर सभी स्त्रियों ने कहा बेटा निमाय तुमने आज क्या क्या कर दिया, अरे कौन सा ब्राह्मण किस जात का ब्राह्मण या ऊंचा ब्राह्मण नीचा ब्राह्मण कुछ उसका जात का पता नहीं है, इतना पता कि ब्राह्मण है तुमने उसका हाथ का खा लिया और तुम जो है पुरंदर ब्राह्मण में हो, श्रेष्ठ ब्राह्मण में हो, बेटा तुम्हारा तो जाति चली गई, अब क्या करेगा बता। तो निमाय पंडित कह रहे देखो मैं हमेशा ही ब्राह्मण के हाथ से खाता हूं, नमो ब्राह्मण देवाय, मैं हमेशा ही ब्राह्मण के हाथ से खाता हूं और मैं ग्वाला हूं, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, मैं ग्वाला हूं और भला ब्राह्मण के हाथ से खाने से ग्वाला अगर ब्राह्मण के हाथ से खाएगा कौन सा उसका जात चले जाएगा, अब सब समझ गए होंगे गोपाल है निमाय जो है पंडित गोपाल है। तो उसी प्रकार जो है जो कैसा जाति चले जाएगा, तो जाति नहीं जाएगा, भगवान कोई जाति नहीं जाता। एक बार जगन्नाथ मंदिर में मुक्ति मंडप में बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग वशिष्ठ भृगु आदि वहां पधारे थे, उनमें एक बहुत बड़ा सभा हुई मीटिंग हुई, भाई ये देखो ये जगन्नाथ किस जात का है, इसका जात कर्म करना चाह रहे थे किस जात का है। तो सारा भृगु संहिता सब उठा के देख लिए, जगन्नाथ का जाति जात कर्म कर रहे थे। तो उन्होंने जो लगा देखो ये जो है पहले ब्राह्मण बना था, कश्यप दीति का पुत्र बना था, ब्राह्मण था, फिर एक क्षत्रिय बना राम, फिर जो है जगन्नाथ जो है वैश्य बना, नंद महाराज नंद नंदन बना। अब जगन्नाथ किस जात का है, क्या शूद्र जात का है, शूद्र में तो गिनती नहीं कर सकते, नहीं गिनती नहीं हुआ जगन्नाथ, तो किस जात का है। तो बड़े बड़े विद्वान आए थे, क्या करे क्या करे क्या करे, सबका जो है माथा फट रहा था। अब इनको जगन्नाथ क्या इंद्रदुम्न का लड़का है या ये विश्व बसु का लड़का है, क्या करे। तो बाद में फाइनली ये डिसीजन निकला कि जगन्नाथ जो है सभी जाति है, जगन्नाथ सर्व जाति है। हे मित्रों, जगन्नाथ क्या सर्व जाति है, तो इसके जात जो है इनका जो जात है जाता नहीं है, किसी ब्राह्मण से खा लिया। तो चैतन्य महाप्रभु वैदिक ब्राह्मण के द्वारा हाथ का बना हुआ भोजन किया करते थे, तो जो वैष्णव ब्राह्मण करते थे, तो इस पर रामानंद तथा हंसकर जो है उनको जो है हंसते हुए, थोड़ा सा हंस के उनको जो है विदाई देने लगे। तो छोटी तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस वैष्णव ब्राह्मण का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। कोई भले ही ब्राह्मण संस्कृत के विधि विधान का पालन करने वाला पक्का ब्राह्मण क्यों ना हो, किंतु यदि वह भक्त नहीं है, वैदिक विधि विधान का पालन करने वाला ब्राह्मण क्यों ना हो, यदि वह भक्त नहीं है तो श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी नहीं है तो उसका निमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए। वर्तमान समय में लोग इतने गिर चुके हैं कि वैष्णव नियम का पालन की बात तो जाने दो, वैदिक नियम तक का पालन नहीं करते। वे सर्वभक्षी है, जो कुछ भी खा लेते हैं। अतः श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को निमंत्रण स्वीकार करते समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है कि नहीं। तो आगे बता रहे, तुम्हारो मुख कृष्ण कथा सुनी दे होय मन, पुनरपि पाए तुम्हारो दर्शन। रामानंद राय ने जब था हंसते हुए उनका अनुमति दे रहे थे, तो महाप्रभु ने कहा तुम्हारे साथ में जो है कुछ कृष्ण कथा करने की इच्छा हो रही है, तो फिर हम मिलना चाहते हैं। तो रामानंद राय ने कहा, राय कहे आई लो यदि पामर शोधित, हे महाप्रभु आपने मुझ जैसे व्यक्ति को आप जो है उद्धार करने के लिए आए। दर्शन मात्र शुद्ध न है मोर दुष्ट चित्ते, तो दर्शन मात्र से मेरा जो हृदय है, मेरा जो गंदा हृदय शुद्ध नहीं होगा। ये उनकी बात नहीं कह रहे, हमारी बात कह रहे। दिन पांच सात रही कर मार्जन, तबे शुद्ध हय मोर यही दुष्ट मन। तो कुछ एक हफ्ता रुकिए, दस दिन रुकिए, और यहाँ पर जो मेरा हृदय को आप सफाई कीजिए, तो तब जो मेरा जो है तब मेरा हृदय जो है शुद्ध होगा, ऐसे नहीं हो सकता। यदा भी पीछे दोहार सहन नायाय, तथापि दंडवत करी चाली लो राम राय। यदि दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, फिर भी रामानंद राय ने उनको प्रणाम करके वो चले गए। उसका भी कारण था कि कुछ जो है कुछ ब्राह्मण जो साथ में थे, जिस कारण से वो जो है कर नहीं पा रहे थे, जो है पूरी चर्चा हो नहीं पा रही थी। प्रभु आए से विप्र घरे भिक्षा केलो, दुई जनर उत्कंठा आसी संध्या हेलो। तो महाप्रभु ब्राह्मण घर में गए और दोनों को जो है भिक्षा ग्रहण किए, लेकिन भिक्षा करते करते महाप्रभु के अंदर ये उत्कंठा हो रही थी, कब मैं जाऊंगा दोबारा महाप्रभु से, कब मुझे रामानंद राय से मुलाकात होगा। दोनों का यही अवस्था थी, कब जो है उत्कंठा जागृत होती है। तो उसी प्रकार जब भी हम लोग कृष्ण कथा के लिए, हमारे हृदय में कितना उत्कंठा है कृष्ण कथा सुनने के लिए, तो उस उत्कंठा से ही कृष्ण कथा जो है समझ आती है। तो उत्कंठा श्रोता का भी होना चाहिए और वक्ता का भी होना चाहिए। जब वक्ता को मौका मिलता हो तो उत्कंठा होकर आता है, लेकिन श्रोता यदि उत्कंठित है तो फिर वो कृष्ण कथा जो है उसमें जो है रस आती है। तो इस प्रकार जो हम इसमें सीख सकते हैं। तो इस प्रकार जो प्रसाद तो ले रहे थे, लेकिन कैसे, कब शाम होगा, कब जाऊंगा मैं मिलने के लिए। देखो प्रातःकाल आए थे रामानंद राय जी गोदावरी किनारे प्रातःकाल स्नान करने के लिए, तो महापुरुष से मुलाकात हुआ था। अब बात होते होते 11-12 बज गया, महाप्रभु ने पुनः स्नान किया, स्नान करके फिर भोजन करने के लिए गए। दो स्नान हो चुका है, भोजन करने के बाद फिर दोबारा शाम के समय फिर उसी जो है गोदावरी तट पे जो है वहां पे आ चुके हैं। गोदावरी जंग बन था, बन में आए थे, बन में ही चर्चा हो रही थी। प्रभु स्नान कृत करी अच्छे न बसिया एक भूत संगे राय मिली लो आसिया। तो महाप्रभु फटाफट आकर संध्या स्नान करके संध्या बंदन करके प्रतीक्षा कर रहे हैं श्रोता। हालांकि यहाँ पे तो मुख्य श्रोता महाप्रभु ही है, वक्ता तो रामानंद राय जी है, तो श्रोता पहले आकर बैठ गए। तो आकर बैठ गए तो उस समय रामानंद राय जी एक सेवक को लेकर साथ में लेकर, राजा थे इस कारण से अकेले नहीं आ रहे थे, एक सेवक को लेकर उनको कुछ दूरी पे खड़ा कर दिए महाप्रभु के पास। जो है वो सिक्योरिटी करा था, वो जाकर महाप्रभु के पास चले गए। तो फिर जो है तात्पर्य, छोटा तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत वैष्णवों को चाहे वो गृहस्थ हो या सन्यासी हो दिन में 3 बार प्रातः दोपहर शाम को स्नान करना चाहिए। ये आदेश एक गृहस्थ के लिए भी और एक सन्यासी के लिए मिल रहा है, दोनों के लिए जो है। हम देखते हैं अभी भी जो हमारे वर्तमान समय में आचार्यगण हैं, वर्तमान आचार्य स्कॉन आचार्य वृंदगण, ये भी दिन में 3 बार जो स्नान करते हैं, तो स्नान करने से व्यक्ति में सत्वगुण होती है। बाहर से जब घूम फिर के आते हैं तो फिर उसमें रजोगुण तमोगुण का प्रधानता हो जाती है, इसलिए दिन में 3 बार स्नान करने का विधान है। जो व्यक्ति अर्चा विक्रम की सेवा में नियुक्त है उससे पद्म पुराण के सिद्धांत का पालन करते हुए नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद उसे अपने शरीर में 12 तिलक लगाना चाहिए। स्नान के बाद तभी ही पूरा पूरा स्नान माना जाता है जब वो 12 तिलक लगाए। 12 तिलक स्नान करे, 12 तिलक लगाए, तब मानो कि कंप्लीट स्नान हुआ है, स्नान जो है नहीं हुआ। ये सब सीखना चाहिए, ये सब चीजों को अवॉइड कर देंगे। आजकल डिस्को तिलक लगाएंगे, ये सब करेंगे तो फिर हम डिस्को भक्त बन जाएंगे, है ना। वैदिक ब्राह्मण बनोगे, ठीक है, कृष्ण कॉन्शियस ब्राह्मण बनोगे तो चैतन्य महाप्रभु भी आपके हाथ के द्वारा बना हुआ भोजन स्वीकार करेंगे। आप घर में गौरांग महाप्रभु को भोग अर्पण करते हो तो कैसे स्वीकार करेंगे? तो वैदिक ब्राह्मण दीक्षा ले लेने से ब्राह्मण नहीं बन जाएंगे, नियम को फॉलो करने से ब्राह्मण बनेंगे। तो हम जो है अपना 12 तिलक सब नियमित रूप से आचमन इत्यादि करके शुद्ध होकर फिर वैदिक नियमों का पालन करना चाहिए, वैदिक वैष्णव ब्राह्मण बनना चाहिए। तो पद्म पुराण में कहा कि अर्चा विग्रह सेवा करने वाले को चाहिए कि वो दिन में स्नान करता रहा करें। तो आज फिर जो ये प्रयार है 53, नमस्कार केल राय प्रभु केलो आलिंगन दुई जन कृष्ण कथा कह रहे स्थान। तो शिष्टाचार के अनुसार जब शाम के समय रामानंद राय जी आए तो महाप्रभु सबसे पहले उनको जो है रामानंद राय ने उन्हें नमस्कार किया, प्रणाम चैतन्य महाप्रभु, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिस्वे नमः। तो महाप्रभु ने उनको आलिंगन किए, क्योंकि बड़े होने के कारण ये है, ये शिष्टाचार है, छोटा उनको प्रणाम करे, बड़े उसको आलिंगन करे, ये वैष्णव एटिकेट है। जो है वो वैष्णव एटिकेट है कि वैष्णव जब बड़ा भी होता है भी छोटे को आलिंगन कर सकता है। गौड़िया वैष्णव बनना चाहते सब सीखना चाहिए। तात्पर्य रह स्थान अर्थात एकांत स्थान में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृष्ण तथा उनके लीलाएं, विशेषता उनके वृंदावन लीलाएं तथा गोपियों के साथ आचरण, ये चर्चाएं अत्यंत गोपनीय है, उनके सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि जिन्हें कृष्ण की लीलाओं के दिव्य प्रकृति के विषय में जानकारी नहीं है वे सदैव यह सोचकर अपराधी के भागी बनते हैं कि कृष्ण एक सामान्य मनुष्य है और गोपियां एक सामान्य युवतियां हैं। तो श्री कृष्ण की जो गोपियों के साथ जो लीला है ये तो बहुत भ्रमित करने वाला है एक साधारण मनुष्य को, कि कृष्ण का भगवत्ता जो है वो दिखाई नहीं देता। इसके अलावा भी कृष्ण की बाकी भी लीलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं, किशोर लीलाएं हैं, साक्ष्य रस की जो लीलाएं, ये भी जब भ्रमित कर देता है, लोग असली जो है कृष्ण को समझ नहीं पाते, एक जो है फैनेटिक बन जाते हैं, कृष्ण भक्ति के नाम से सिद्धांत नहीं समझते हुए जो है एक भावुक भक्त बन जाते हैं। तो इसीलिए इसलिए प्रभुपाद जी ने जो कृष्णा बुक जो लिखे हैं वो हर कृष्ण की लीला में सिद्धांत को दिए। ये जानना जरूरी है कृष्ण अगर माखन चोरी भी कर रहे हैं, गोपियों का वस्त्र भी हरण कर रहे हैं, तो इसमें यह कितनी भगवत्ता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु एकांत स्थान में कृष्ण चर्चा जो है कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण चर्चा सुनने से पहले उसके तात्विक को समझना, तात्विक भी जानना जरूरी है, तात्विक भी जानना जरूरी। इसे कम भक्तों को जो है मौका मिलती है, बहुत कम लोग सीख पाते, नहीं तो देखते समाज में वो कहते हैं कि कृष्ण जो है आज हमारे घर में एक दिल्ली शहर में एक फ्लैट में आकर रासलीला करते हैं। जो है सभी अरे भाई हम लोग जो है हम यहाँ जीवन बीत गया, हमें कभी से एक पता नहीं घर में चाय कॉफी पी लेते हैं, कभी कभी पेस्ट्री भी खा लेते हैं, घर में कृष्ण कैसे आके प्रकट होते हैं, भावुकता। तो ये इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो है एकांत में भक्तों के संग में कृष्ण कथा कर रहे थे, भाव समाज में नहीं कर रहे थे, इसलिए एकांत स्थान में महाप्रभु से जो है रामानंद राय से मिले। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का गोपियों के आचरण के विषय में सार्वजनिक रूप से कभी भी चर्चा नहीं करते थे, चैतन्य महाप्रभु नहीं करते थे। अतः चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत का पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों के लिए यह आदेश है कि वे कृष्ण की वृंदावन लीलाओं की चर्चा जनता के सामने ना करें। सामान्य जनता में कृष्ण भावनामृत जागृत करने की सबसे प्रभावशाली विधि है संकीर्तन करें। तो संकीर्तन करेंगे तो पहले संकीर्तन करें, तो इससे जो धीरे धीरे जो उनका जो है फिर कृष्ण को जानने के लिए, उनकी भगवत्ता को जानने के लिए वो लोग सक्षम होंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु इस सिद्धांत का कठोरता से पालन करते थे और विद्वानों के साथ या सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती के साथ भगवत गीता जैसे दर्शन पर चर्चा करते थे, किंतु ये सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जैसे शिष्यों को भक्ति संप्रदाय के नियमों की शिक्षा देते थे। वे रामानंद राय के साथ कृष्ण तथा गोपियों के मध्य सर्वोच्च भक्तिमय आचरण की चर्चा करते थे। सामान्य जनों के लिए बड़े तत्परता से संकीर्तन करते थे, सामान्य लोगों के लिए महाप्रभु संकीर्तन करते थे। हमें भी चाहिए कि कृष्ण भावनामृत के सारे विश्व में प्रचार करते समय इन्हीं सिद्धांतों को हम अपनाए। तो तात्पर्य तो श्रील प्रभुपाद का ये तात्पर्य है हम सबके लिए कि हमें कृष्ण कथा की जो कृष्ण संकीर्तन के ऊपर ज्यादा चर्चा करने के लिए हम प्रभुपाद जो हमें आदेश दे रहे हैं। किसी भी कथा में कीर्तन में भगवान का नाम से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, प्रारंभ भी भगवान का नाम और अंत में भी जो है भगवान का नाम का कीर्तन करने के लिए हम सबका आदेश, जितना भगवान का नाम करोगे उतना ही अच्छा है। हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी श्री राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि सब चाहे कोई भी संप्रदाय क्यों ना हो, संप्रदाय में देखो दोस्त है, मैं इस धर्म का हूं, मैं उस धर्म का हूं, लेकिन अगर कोई कृष्ण कीर्तन कर रहा है, भगवान का नाम कीर्तन कर रहा है तो ठीक है, वो ठीक है, क्योंकि भगवान का नाम तो वो खांटी है ना, शुद्ध है ना, उसमें तो कोई मिलावट नहीं है। विचार में इसमें से मिलावट हो सकती है, लेकिन भगवान का नाम का कीर्तन में कोई मिलावट नहीं है, इसलिए सबको जो है कीर्तन करने के लिए कहा गया है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य समाप्त होता है, फिर आगे मंडे से जो है हम इसका जो मुख्य वार्तालाप जो शुरू होगी, प्रभु कौय और राय कौय, ये सब जो है चर्चाएं शुरू होगी। पहले महाप्रभु ने प्रश्न किया, तभी रामानंद ने उत्तर दिया। ये है भक्ति विषय का चर्चा करने सुन जानना चाहते हैं, पहले प्रश्न करना चाहिए, फिर जो है उत्तर आती है। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी को हमारी बात में कुछ ठेस लगे तो हम सबके चरणों में प्रार्थना करते हैं, क्षमा करने की प्रार्थना करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धवे भ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की।